देखो, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें कुंदकुंदाचार्य लिखित समय सार का यहाँ स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो कहूँगा कि जो इस समय सार को सही समझेगा वह अपने स्वरूप को समझेगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि जब यह शास्त्र स्वामी जी के हाथ में आया था तब उन्होंने तो ऐसे उद्गार निकाले थे कि आहो, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। कहने का मतलब यह है कि यह बात जो है समय सार, समय के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ समय का अर्थ द्रव्य लेना और समय का अर्थ जीव द्रव्य लेना, आत्मा, और उसका सार इसमें बताया गया है। हम तो जानते हैं कि कुंदकुंदाचार्य जो थे वे तो चारण, मतलब उनके आकाश गमन विद्या थी, आकाश में गमन कर सकते थे, ऐसे वे थे। और यह भी जानते हैं कि वे सिमंदर भगवान के समोशरण में साक्षात होके आए थे। ऐसी अवस्था में जब वे सिमंदर भगवान को सुनकर आए और उसके बाद उन्होंने ये शास्त्र लिखने की शुरुआत की, और इस शास्त्र को पढ़कर उनके बाद के जो आचार्य हुए, ये भी हम जानते हैं कि कुंद भगवान जो हुए हैं वे महावीर भगवान के बाद अंदाजन 500 साल यानी विक्रम संवत जब से चालू हो गया उसी समय उनका काल है। और वह उनके बाद के जो आचार्य हुए उनके भी लिखे हुए हमें ऐसे, क्या कहते हैं, शिलालेख मिलते हैं। उन्होंने ऐसा उसमें लिखा है कि अहो, अगर कुंदकुंद आचार्य नहीं होते तो यह मुनियों को सच्चा मार्ग कैसा प्राप्त होता। यानी देखो, उन्होंने तो ऐसी बात लिखी है कुंदकुंदाचार्य भगवान के समक्ष, यानी उनके बारे में, कि अगर वे नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता, हमें सही स्वरूप कैसा समझ में आता। ख्याल में, थोड़ा थोड़ा आगे आप आ जाओ। क्या है, अभी आपके कम नसीब से अधिक लोग आएंगे तो रोजाना जो आपको हाथ पैर फैला के बैठने की आदत सी हुई है, वो थोड़े को उसको जरा तकलीफ करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान रखना कि एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, हाँ, उस अवस्था में भी हम रहकर आए हुए क्या? तो यहाँ तो इतना बड़ा हॉल है, 10-20 लोग बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अभी हम क्या देख रहे थे, कुंद आचार्य भगवान की ऐसी बात थी कि उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन दिया है इस अपने स्व स्वभाव को समझने का, तो वो तो हमारे तुम्हारे लिए तो बात ठीक है, लेकिन मुनि जो आचार्य उनके बाद हुए वे भी उनके गुणगान गाते थकते नहीं थे। उन्होंने तो ऐसा शिलालेख उपलब्ध है, ये पुस्तक के 13 नंबर के पृष्ठ पर उनके बारे में आचार्यों ने लिखे हुई बातें हैं, ये पीछे लेफ्ट साइड में, इसमें नहीं होगी, दूसरी जगह, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि उन्होंने ये बात लिखी क्योंकि वो जब हुए थे उस जमाने में श्वेतांबर मत चालू हुआ था, तब उन्होंने डटकर उनका विरोध किया। अष्टपाहुड नाम का जो शास्त्र लिखा है उसमें ये बात विशेष रूप से हमारे ख्याल में आती है। और इनके जो 5 परमागम थे उनमें से समयसार नामक जो है और बाकी अन्य प्रवचनसार नियमसार आदि 5 परमागम तो हमें उपलब्ध है, इनके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है लेकिन वो अनुपलब्ध है, अभी हमें प्राप्त नहीं है। तो यह जो उनके बाद में होने वाले आचार्य कहो या हमारे तुम्हारे जैसे जीव कहो, हम कुंद आमनाय के हैं ऐसा कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। अगर हमें कोई बात सिद्ध करनी है तो हम कुंद आचार्य भगवान के रेफरेंसेस दे के कहते हैं, देखो कुंद भगवान ने ये शास्त्र में ये बात लिखी है, तो उनका कहना ये प्रमाण माना जाता है। और तो और उनको ये कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहने में आता है। ऐसे जो कुंद आचार्य है और उनका यह जो समयसार नामक जो ग्रंथ है, उस समयसार ग्रंथ का हम यहाँ पठन पाठन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो कुंद आचार्य थे, एक मिनट देखो, बहुतों के पास किताबें नहीं है, आप विचलित मत होना, दो दो जन एक एक किताब में देखने की कोशिश करना। कविता में ना आप इधर आएंगे, थोड़ा पीछे हटना। अभी ये तो सारी बातें आप जानती हैं, लेकिन जो बात आप नहीं जानते और मैंने बहुत बार आपको कही है, फिर भी कुछ लोग नए आए हैं इसलिए मुझे कहने का मोह, उसको मैं नहीं रोक सकता। देखो 1978 में ये जगह हमने ली थी, 12 जुलाई की ये जगह हमारे हाथ में आई थी और हमने 14 जुलाई की सोनगढ़ की टिकट निकाली थी, 2 दिन में टिकट मिल गई थी हमको और हम गए थे वहां पर। और उस वक्त जब 10 तारीख को हमारे हाथ में ये जगह आई थी, उस समय हमने ये जो कबर्ड दिख रहा है ना, उसमें लोग क्या क्या कुंभ ला के रखते हैं, वो ला के रखते हैं, हमने हमारे पुराने घर से समयसार ला के रखा। और दोनों ने मन में ऐसी ही नक्की किया था कि ऐसी ही हम भावना भाए कि ये समयसार नामक शास्त्र हम जरूर अवश्य अथ से इति पर्यंत, यानी शुरू से आखिर पर्यंत पढ़ेंगे। और इत्तफाक से हमने दोनों ने तो वो क्या यह भी शास्त्र 2 बार पढ़ा इंडिविजुअली, मतलब दोनों ने साथ में। उसके बाद ये अरविंद भाई दोषी जो है उनके आग्रह से हमने ये आद्योपांत 11 के 11 भाग भी पूरे पढ़ लिए थे एक बार। अब मुझे ऐसी भावना हुई कि क्यों ने हम समयसार दोबारा पढ़े और सबसे मत लिया और हमने यही भाग पढ़ने के नक्की किए हैं। देखो मैं तो आपको यही विनती करूंगा कि यहाँ पहले में पहले तो ये बात हम नक्की करेंगे कि ये जो शास्त्र में जो बात बताई जा रही है वो मेरे लिए बताई जा रही है, मेरा ही स्वरूप इसमें बताया जा रहा है, और मुझे तो मुझे ही समझना है, और मेरा स्वरूप समझने से मैं उसमें किस तरह से एकाग्र हूँ, और एकाग्र होने से जो मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति होगी कहो या अनुभव की प्राप्ति होगी कहो, वह तो मेरे धर्म की शुरुआत है। अन्यथा धर्म की शुरुआत तो जिनेन्द्र भगवान ने कोई है ऐसा बताया ही नहीं है। तो इतना इंट्रोडक्टरी देते हुए हम अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने किताबें हैं, तो यहाँ लिखा है ओम परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समयसार ऊपर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ना प्रवचनो, श्रीमद् अमृत चंद्र सूरी कृता आत्मख्याति। देखो यहाँ दो बातें हैं, यहाँ जो कुंद कुंद आचार्य हो गए उसके बाद तकरीबन 1000 साल के बाद अमृत चंद्र नाम के आचार्य भी हुए, और उन्होंने इस समय सार पर टीका रची। टीका का मतलब उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की, उसमें अधिक विश्लेषण बताया, और न मानो के उनको कुंद कुंद आचार्य का हार्द का पता लग गया और उन्होंने उनके मन में जो बात थी उसको अधिक रूप से विश्लेषण करके हमें समझाया। तो यह आत्मख्याति नाम का उन्होंने ये टीका रची, और वह अनेक दिन तक संस्कृत में, पहले तो उन्होंने क्या कहते हैं कुंद कुंद आचार्य ने तो अर्धमागधी में पहली बार ये लिखा था समय सार, उसके बाद इन्होंने संस्कृत में टीका रची, और वो संस्कृत में टीका रचते रचते उनको अंदरंग से ऐसे विभोर हो जाते थे, आनंद विभोर हो जाते थे कि वो बहुत बार तो उसमें पद्यात्मक भी उन्होंने लिख दिया, और जहां वह उनका भाव मतलब भाव थोड़े से ठंडे हो जाए समझ लो तो उन्होंने गद्य में भी उसमें लिखा, यानी उनकी टीका ना सिर्फ गद्य में है लेकिन पद्य में भी है। और कुछ दिन जाने के बाद जैसा जैसा काल आगे बढ़ते जा, लोगों को अर्धमागधी समझना मुश्किल हो गया तो संस्कृत में लिखा, संस्कृत समझना मुश्किल हो गया तो जयचंद जी छाबड़ा नाम के एक करीबन आज से 300 साल पहले हुए, 250-300 साल, उन्होंने यह हिंदी में भावार्थ लिखा, और उन्होंने हिंदी में उनका ये ट्रांसलेशन भी किया। अब देखो बात तो ऐसी रही, अपना हिंदुस्तान इतना बड़ा है तो कई लोग तो ऐसे कि उनको हिंदी भी समझना मुश्किल हो गया, तो फिर अपना सौभाग्य ऐसा है कि ये गुजराती में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ और गुजराती में भी छपा। अब आगे की बात नहीं बताऊंगा, उसका मराठी में भी ट्रांसलेशन चालू है और वो भी छप रहा है। ख्याल में आपसे कोई मतलब नहीं है क्यों? तो अब हम ये कहते हैं कि यह जो अमृत चंद्र सूरी कृता आत्मख्याति, यानी श्रीमद् अमृत चंद्र जो मतलब आचार्य अमृत चंद्र जो थे, उन्होंने आत्मख्याति नाम की उसके ऊपर टीका रची है, और उसमें जो भावार्थ जो दिया है वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा का है। अब यहां पर हम ये जो पहला नंबर का जो कोई श्लोक है वह तो अमृत चंद्र सूरी ने लिखा हुआ है, क्या कहते हैं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। देखो ये तो हमें मालूम है कि यह जो हम शास्त्र पढ़ते हैं उसको अलग अलग अपेक्षा से हम पढ़ सकते हैं कि शास्त्र यानी यह जो आगम है वह पढ़ने की रीति भी 5 प्रकार की है। हमने देखा था आगमार्थ, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ वगैरह वगैरह 5 प्रकार से हम उसको देखते हैं। तो ये हम जब पढ़ते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे, अगला पेज आप निकालिएगा। देखो ये जो गुजराती में जो लिखा है ना, देखो इसके पहले जो गुजराती अनुवाद जो लिखा है वह जयचंद जी छाबड़ा ने जो हिंदी में पद्यात्मक जो बातें लिखी थी उसका गुजराती अनुवाद किया हुआ है। अब यहां जो है ये पृष्ठ क्रमांक 2 पर श्लोकार्थ लिखा है। नमः समय साराय, समय अर्थात जीव नामनो पदार्थ, तेमा सार, सार एटले उसका मूल स्वरूप क्या है, जे द्रव्य कर्म भाव कर्म अने नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, तेने मारा नमस्कार हो। क्या कहते हैं कि ये जो शुद्ध आत्मा है वह शुद्ध आत्मा कैसा है, तो समझाते हैं कि वह द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित है, इसलिए वह शुद्ध है। तो ऐसे जो समय सार है, ऐसा जो जीव नाम का जो पदार्थ है, उसको यहां नमस्कार किया है। तो अभी हमें प्रश्न पड़ेगा कि ये द्रव्य कर्म क्या होता है, नो कर्म क्या होता है और भाव कर्म क्या होता है। आप जानते हैं अश्विनी, द्रव्य कर्म किसको कहते हैं? बोलो। हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं। भाव कर्म यानी क्या जानती है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको ये सारा बताऊं और आप सब जानती हो, आप यानी सब आप में से, तो कहने का कोई प्रयोजन ही नहीं। इसलिए हम आपसे प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि अगर आपको मालूम हो तो हम आगे बढ़े, और नहीं मालूम हो तो उसका हम आपको बताएं। प्रभावेन आप जानती हैं नो कर्म किसको कहते हैं? हाँ, वो नो कर्म नहीं, वो नो कषाय है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, उसको क्या कहते हैं? मन वचन काय को क्या कहते हैं? आपको कहना था कि शरीर मन वाणी को नो कर्म कहते हैं। कोई बात नहीं, आप आधे रास्ते तो आ गए। अब द्रव्य कर्म यानी क्या, आप जानती हैं कविता? कोई बात नहीं, बोलो हेतल। आठ कर्म, कौन से आठ कर्मों का नाम मालूम है? हाँ बोलो बोलो। बहुत अच्छा, ये आठ कर्मों का जो समूह है उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और भाव कर्म यानी क्या, कौन बताएगा? आप बताएंगे बेन? हाँ बोलो बोलो। हाँ, क्या क्या बताया आपने? राग और द्वेष को भाव कर्म कहते हैं। और इसमें कोई सुधार करना चाहता है? हाँ बोलो। बोलो। हाँ, मम्मी बोलती है मोह राग द्वेष। हाँ, क्योंकि मोह अभी बहुत है ना, तो उनको बराबर याद है मोह राग और द्वेष, ये तीनों बातों को मिलकर। देखो भाई, जो सम्यक्त्व होता है ना उसको मोह नहीं होगा, कौन सा दर्शन मोह नहीं होगा, लेकिन चारित्र मोह होगा। चारित्र मोह में राग द्वेष को लेना, और मोह जो कहेंगे हम उसको दर्शन मोहनी का जो मोह है उसको लेना हो तो वह भी क्या कहते हैं उसके कारण। देखो देखो, ये चारित्र मोह, सॉरी भाव कर्म जो है वह भाव कर्म के कारण इस जीव को निरंतर कर्म का बंध होता है। और नो कर्म में एकत्व बुद्धि होने के कारण, ख्याल में है? और जो द्रव्य कर्म है उसका मैं करता हूं ऐसा यह जीव मानता है, इसलिए भी उसको कर्म बंध होता है। तो आप यहां तो वो बात नहीं, यहां तो ये समझाना चाहते हैं यह जो शुद्ध आत्मा जो है उसको शुद्ध क्यों कहा। तो इधर लिखा है देखो कि ये समय सार बताया ना, समय अर्थात जीव नामनो जे पदार्थ, पदार्थ इतले यहां कोई चीज मत समझना, पदार्थ कहो, चीज कहो, अर्थ कहो या द्रव्य कहो, वस्तु कहो, उसका अर्थ द्रव्य ही लेना। तो क्या कहते हैं, समय अर्थात जीव नामनो पदार्थ, तेमा सार, यानी अभी देखो हम सारे यहां बैठे हुए जो है वो कौन है, जीव है। तो आप यानी समय है, मान लो तो अभी आपको सार रूप क्या होगा, कौन होगा? हाँ बोलो। हाँ, निज अपना स्वभाव कहो, निज अपना द्रव्य कहो, वह मेरे लिए सारभूत है, क्योंकि मैं पर का आश्रय लूं तो मुझे राग द्वेष की उत्पत्ति हुए बिना रहेगी नहीं, लेकिन मैं स्वयं सारभूत हूं और मैं मेरे में एकाग्र हो जाऊं तो राग द्वेष की उत्पत्ति होगी नहीं। इसलिए कहते हैं यह जो तेमा सार कौन छे, शुद्ध आत्मा, क्योंकि हमें किसको नमस्कार करना है यहां, तो ये तो बाह्य नमस्कार नहीं, ये तो अंतरंग में मैं लीन हो जाऊं ऐसा, तेने मारो नमस्कार हो ऐसा जो कहते हैं, तो वह तो मैं उसमें एकाग्र हो जाऊं ऐसी यहां भावना भा रहे। तो वो शुद्ध आत्मा कैसा है कि जिसमें द्रव्य कर्म नहीं है, यानी आठ कर्म रहित ऐसा जो आत्मा है, जो भाव कर्मों से रहित ऐसा जो आत्मा है, और जो नो कर्म से रहित ऐसा जो आत्मा है, उसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। तो ये शुद्ध आत्मा भगवान का ही हो सकता है कि नहीं? हाँ, क्या कहते आप? सबका होगा। बहुत देखो, हाँ बहन कहती है कि सबका आत्मा शुद्ध ही है, यह त्रिकाल शुद्ध ही है, तो फिर हमको क्यों फिर उलझा रहे हैं? हम शुद्ध ही हैं, तो फिर हमको क्यों आत्मानुभव करो आत्मानुभव करके पीछे लगे आप? ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है, ख्याल में है ना? लेकिन यहां तो द्रव्य की अपेक्षा जब हम देखते हैं, उसके स्वभाव की अपेक्षा जब हम देखते हैं, तब तो वह आत्मा शुद्ध ही है, और ऐसा जो शुद्ध पना जो है वह पर्याय में प्रकट हो, इसलिए सारा प्रपंच करना है हमें। आपको मालूम होगा हिमालय कभी चढ़ा है आपने? नहीं चढ़े। जो चढ़ते हैं हिमालय, मान लो कोई उसकी हाइट कुछ 28 या 29,000 फुट की जो भी होगी, मैं विशेष नहीं जानता हूं, तो वो कितने दिन में जाएगा? कोई जाएगा तो एक दिन में क्या, एक मिनट में? हाँ, चढ़ने में मान लो 3 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, किसी को 6 महीना लगेगा, कोई 40 दिन में जाएगा। लेकिन जब कोई शुरू करता है तो तुरंत तो नहीं पहुंचता है, ख्याल में है ना? तब हमें यहां क्या करना है, पहले तो यह आत्मा का जो स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, उसको जानना है, और जानकर उसमें एकाग्र होना है, क्योंकि तेने मारा नमस्कार हो, तो ये तो ऐसा हो गया, कल से हम क्या करेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं तो मैं मेरे कोई अष्टद्रव्य चढ़ा दूं, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं ना, क्या तो ऐसा चलेगा? ख्याल में आया? तो बात तो यहां समझा रहे हैं कि यह जो शुद्धत्व स्वभाव में जो है वह पर्याय में प्रकट हो, वही महानता है। क्योंकि निगोद का जो जीव है वह भी शुद्ध स्वरूप से ही है, चाहे जो गति का जीव हो, सिद्ध गति का जीव हो या नरक गति का हो, या यहां तीरंज यानी निगोद का जीव हो, स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो उनमें रंच मात्र भी अशुद्धता नहीं है, त्रिकाली शुद्ध है वह, और ऐसा शुद्धपना मुझे पर्याय में प्रकट हो, और वो प्रकट होने का रास्ता कौन सा है? तो कहते हैं उसी में लीनता करना, उसी में एकाग्रता स्थिरता करना, यही एक में वो उपाय है। इसलिए पहले क्या समझा रहे हैं, यह शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं। पहले जब हम उस स्वरूप को समझेंगे तो उसमें हम लीनता कर पाएंगे, और जब ही धर्म की शुरुआत हो जाएगी, और जब ही हम मोक्ष में जाएंगे, तो कोई तो ऐसा कह सकता है कि ये पंचम काल में तो यहां भरत क्षेत्र में मोक्ष की तो प्राप्ति होती नहीं है, तो आप क्यों माथा मार रहे हैं हमारा? कह रहे हैं हम तो जिस दिन अभी यहां चौथा काल आ जाए तो फिर हम अपने आत्मा में जाने की कोशिश करेंगे, ख्याल में? तो ऐसा थोड़ी होगा। अरे आज भले तुझे मोक्ष नहीं प्राप्त हो, लेकिन तुझे किसने बताया कि इस पंचम काल में आत्मानुभूति नहीं होती है? अरे शास्त्र में तो ऐसा वचन है कि ये पंचम काल में भरत क्षेत्र में तो मुनि अवस्था तक जीव पहुंच सकता है। क्यों? कि आखिरी में जो अभी जो 21,000 वर्ष का जो पंचम काल है उसमें से तो 2,500 वर्ष निकल गया, अभी रह गए मान लो 18,000 वर्ष, तो उनमें आखिर तक मुनियों का सद्भाव है, उनका नाम तक लिखा है। अब हम सोचे कि भाई हमें कोई मुनि दिखते नहीं तो क्या करें हम, तो नहीं दिखे तो ना दिखे हा? अभी भगवान नहीं दिखते आपको, दिखते क्या? तो फिर भगवान की पूजा करते हो कि नहीं, कि नहीं नहीं भगवान दिखाओ फिर ऐसा नहीं है। ऐसे यहां कहते कि तू शुरुआत में पहले तो अपने स्वभाव को जान, इसलिए प्रथम में प्रथम क्या कहा, नमस्तमय साराय। पहली बात कौन सी दी है देखो, तो वहां बताते हैं समय अर्थात जीव नामनो पदार्थ तेमा सार जे द्रव्य कर्म भाव कर्म ने नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा तेने मारा नमस्कार हो। ये नमस्कार करना यानी हाथ जोड़ के नमस्कार करने वाली बात नहीं है, उसमें मैं लीन हो जाऊं ऐसा, ये कौन कह रहे? मुनिराज स्वयं क्यों कह रहे साहब? मुनिराज तो अंदर में स्थिर हुए बिना मुनि हो गए क्या हा? फिर भी वो अभी लिख रहे ना, तो लिखते समय कौन से गुणस्थान में होंगे राजेश? छठे गुणस्थान में, यानी प्रमत्त गुणस्थान है, प्रमत्त संयत। तो उसमें वो तो ऐसा सोचते ये कहां मेरे पीछे ये कौन से परिणाम लगे हैं कि मुझे ये शास्त्र रचने के विकल्प आ रहे, मैं क्यों नहीं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊं। इसलिए पहले में पहले ऐसी भावना भाते हैं कि नमस्तमय साराय, कि ऐसे शुद्ध आत्मा में जो है उसमें मेरा तेने मारो नमस्कार हो। ते केवो छे, अब ये शुद्ध जो आत्मा है उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप कह रहे हैं। ते केवो छे भावाय, भावाय यानी शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु छे, यानी वो सिर्फ सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप यानी हैया थी विद्यमानता, इतना ही नहीं तो समझा रहे कि वो सत्ता कैसी है, तो शुद्ध स्वरूप है। क्या कहा? शुद्ध स्वरूप वस्तु छे, वस्तु का अर्थ हमने अभी बताया था आपको, द्रव्य छे। आ विशेषण पद थी सर्वथा अभाववादी नास्तिकों नो मत खंडित थयो, यानी एक नास्तिक मत भी है, वो ऐसा मानते हैं कि ये आत्मा वगैरह कुछ है ही नहीं। आत्मा कहो भगवान कहो, भगवान को कोई न मानने वाले को हम नास्तिक कहते हैं, तो यहां तो आत्मा को भी न मानने वाले को नास्तिक तो नास्तिक, तो उनका खंडन हो गया। देखो ये उनका खंडन करने के लिए लिखा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो पद लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं कि अपना जो मत है उसको तो हम एस्टेब्लिश करें और जो परमत है उसका खंडन हो जाए, तो एक एक शब्दों के माध्यम से परमत का खंडन सहज रूप से होता है। यह तो मुनियों के बुद्धि की चमक है। तो क्या कह रहे देखो, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु छे आ विशेषण पद थी, यानी ये भावाय लिखा ना, तो भावाय से क्या समझाना चाहते हैं कि आ विशेषण पद थी सर्वथा अभाववादी, यानी ये आत्मा है ही नहीं ऐसा सर्वथा अभाव मानने वाले जो नास्तिक है उनके मत का खंडन हुआ। ये नास्तिकोनो मत खंडित थयो। अब फिर आते हैं वापस, तो वड़ीते के वो छे, कौन नास्तिक के वो छे ऐसा पूछ रहे ना, नहीं तो किसकी बात कर रहे? ये आत्मा तुम्हारे जो शुद्ध आत्मा तुम्हारो तुम्हारा तरफ से, आप लोग ऐसा बोलते ना आपका जैन धर्म क्या बोलते हैं, और वो भी कौन पूछता है, वो स्वयं जैन, तुम्हारा जैन धर्म क्या बोलता है ऐसा बोलते हैं, बोलते कि नहीं तुमको? अच्छा ठीक है बोलने वाले ऐसा ही बोलते। तो यहां कह रहे हैं कि वड़ी ते के वो छे, यानी ते यानी आत्मा के वो छे चित स्वभावाय, यानी कैसा जेनो स्वभाव चेतना गुण स्वरूप छे, जेनो स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वरूप छे, चेतना कहो या ज्ञान दर्शन में कहो एक ही बात है। तो एक पहले तो बताया वो सत्ता स्वरूप है, सत्ता यानी कभी त्रिकाल विद्यमान है, उसकी सत्ता कभी नहीं हो ऐसा नहीं है, फिर भी वो कैसा है तो स्वभाव कैसा है, तो चेतना स्वरूप है, यानी जो ज्ञान दर्शन स्वरूप से त्रिकाल है। ख्याल में आ विशेषण थी, गुण गुणीनो सर्वथा भेद माननार नैयायिको नो निषेध थयो। अभी हमारी तो पोजीशन ऐसी है कि नैयायिक क्या होता है, मीमांसक क्या होता है, इस बात का ही हमें पता नहीं। तो उनके मत क्या होते हैं वो क्या पता, और उनका मत का खंडन कैसा किया इस बात की भी क्या पता। मैंने कहा ना, काल दोष से पहले तो ऐसा था, जब महावीर भगवान हुए उसके बाद तो 5 केवल ज्ञानी हुए, और वह तो पूरे मतलब द्वादशांग के पाठी थे। तो जैसे जैसे काल बीतते गया तो एक एक अंग का ज्ञान होते गया, कम होते गया। तो फिर आखिरी में तो ऐसी पोजीशन आ गई कि जब दर्शन आचार्य हुए तब उन्होंने तो ये षटखंडागम आदि की रचना करवाई, ख्याल में है? और वहां गुणधर नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने ये द्रव्य दृष्टि की बात आगे चलाई, और उनके ही मतलब लाइन में ये कुंदकुंदा आचार्य, उन्होंने वो बात उठाई कर्णानियोग की, नहीं द्रव्यानियोग की। और वहां जो हमने दर्शन आचार्य को देखा था, उन्होंने तो कर्णानियोग का विषय आगे बढ़ाया, ख्याल में है? तो यहां पर ये कह रहे हैं, तो मैं ये बता रहा था कि ऐसा डे बाय डे ये ज्ञान की हीनता हीनता होने लगी, तब जीवों को ये बात समझ में आए, इसलिए उसके बाद लिखित रूप से चालू हो गई बात। तो क्या इसके पहले लिखने को किसको आता नहीं था, क्या कोई मुनि को लिखने को नहीं आता था, तो इतने देरी से लिखना चालू किया? अरे उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि पहले तो पहले एक ने कोई बात बताई तो वो बात मुखोद्गत हो जाती थी, यानी आचार्य दूसरों को उपदेश देवे तो उनके शिष्य सारा याद कर लेते थे। हल में ये 12 अंक की रचना होती थी, वो तो एक अंतर मुहूर्त में रचना होती थी, और वो अपने शिष्यों को सिखाए तो उनके मुखोद्गत होता था। लेकिन काल का महिमा ऐसा है कि हीन हीन काल हो रहा है ना, तो सब जानने जानने में सब में इनकी हीनता हुई। अब इसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ है क्या आपके पास, कि पहले तो लोग बहुत जानते थे और लिखा पढ़ी नहीं थी इसलिए वो नहीं लिखते थे, बाद में वो बकड़ लिखना चालू किया? धोखे में मत रहना। आदिनाथ भगवान थे, उनकी 2 कन्याएं थी, मालूम है नाम, मालूम है आपको? हाँ, और सुंदरी। वे भी लिखना पढ़ना जानते थे। हाँ, वो तुम तो सब जानती है। हाँ, यानी उस जमाने में, आज से समझ लो लगभग हो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले ये लिखना पढ़ना था। उसी समय 80 मसी कृषि आदि विद्याएं सिखाई थी ना, तो उसमें लिखने का भी था, लेकिन वो गरज ही नहीं पड़ रही थी। अभी हमारे 2 पीढ़ी आगे चलते हैं, हमारे जो बाप जादे थे वो तो पहाड़ी जो थे ना, वो फट 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 बोल लेते थे, और अभी 7 7 बोलेंगे तो क्या क्या क्या, हाँ 7 7 क्या होता है वो भी हमें पता नहीं, मालूम है आपको कितना होता है? नहीं, वो हमने तो इतनी तरक्की कर डाली राजेश कि हमने तो कैलकुलेटर लाया, अरे दिमाग चलाने की गरज नहीं है, खाली बटन दाबो बस, फिर बटन दबाने के लिए भी तो दिमाग लगता है कि नहीं? नहीं उतना है अभी बोलते हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, दिन ब दिन हम समझते हैं कि हमने बहुत सारी तरक्की की। अभी पहले मेडिकल में भी ऐसे ही होता था, डॉक्टर लोग सब फटाफट याद रखते थे, अभी तो वो इसमें देखते हैं क्या, कंप्यूटर में क्या, किधर से किधर जाता है किधर जाता है। अभी कोई मेडिकल में पहला इधर से ये वेन इधर से निकल के इधर जाती है, ऐसा याद में रखना पड़ता। अभी तो तुम देखो बस आ गया, फिर आंख बंद करके ऑपरेशन करो, यानी टीवी में देखते देखते। हम तो समझते हमने तरक्की की, लेकिन ये तो ज्ञान का ह्रास हो रहा है, ख्याल में है? तो यहां ये समझा रहे हैं, कौन सी बात समझा रहे हैं, कि जेनो स्वभाव चेतना गुण छे आ विशेषण थी गुण गुणीनो सर्वथा भेद माननार। ये नैयायिक जो होते हैं, ये नैयायिक नाम का एक पंथ है, संप्रदाय है, वो ऐसा मानते हैं गुण, गुण याने गुण, और गुणी याने द्रव्य, वो ऐसा मानते हैं ये सर्वथा इनका अभाव होता है, वो जब एक साथ आते हैं फिर वो द्रव्य तैयार होता है, और जैनिज्म ऐसा मानता है कि यह जो द्रव्य है वह गुणों का ही समूह है ना? एक पहले द्रव्य था फिर बाद में आके उसमें गुण बैठे, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों का नित्य तादात्म्य में संबंध है, और फिर ब्रैकेट में कहेंगे अनित्य भी है, मतलब भेद भी है और अभेद भी है, वो बात यहां नहीं है। तो यहां ये जो बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि आ विशेषण थे गुण अने गुणिनो सर्वथा भेद मानने वाले वो जो नैयायिक है उनके मत का यहां खंडन होता है। क्योंकि क्या बताया कि ये स्वभाव कैसा है, चेतना गुण स्वरूप है। तो स्वभाव चेतना गुण स्वरूप है, इससे क्या निकलता है? अरे तो स्वभाव तो उसी को कहेंगे कि जो त्रिकाल रहता है उसी को स्वभाव कहते हैं। आज है और कल नहीं है, फिर पहले दो चार दिन इधर उधर गया फिर वापस आ गया, ऐसा नहीं। स्वभाव तो वही स्व का भाव यानी स्व का जो स्वभाव है वह कभी भी उस द्रव्य से जुदा नहीं होता। तो ये कैसा स्वभाव है? तो कहते ज्ञान दर्शन स्वरूप जो चेतना गुण है वह उसका स्वभाव है, इसलिए कहते चित स्वभावाय भावाय। और आगे क्या कहते हैं, स्वानुभूत्या चकासते, पोता नीज अनुभवन रूप क्रिया थी प्रकाशे छे। चकास्ते यानी प्रकाशना, तो प्रकाशना यानी चमकता है ऐसा मत लेना। क्या कहते हैं, पोता नीज अनुभव रूप क्रिया थी ज्ञान मा आवे छे, जणाई जाय छे, ऐसा लेना। चकास्ते यानी चमकता है, प्रकाशता है, ऐसा नहीं। वह आत्मा का अनुभव स्वयं के अनुभवन रूप क्रिया से ही होता है। अर्थात पोता ने पोता थी जो जाने छे प्रकट करे छे। यानी कई लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि क्या हमें सम्यक दर्शन होगा तो हमको पता लगेगा कि नहीं। केवली को तो लगेगा क्योंकि वह तीन काल को और तीन लोक को जानते हैं, तो वो तो जानते होंगे कि मैं तो नहीं जानूंगा, ऐसा मानते हैं लोग। तो उसका विरोध करने के लिए यहां बताते हैं, क्या कहते हैं, पोता ने पोता थी जो जाने छे स्वानुभूत्या चकासते। ये बात जो बात बताई ना, आविशेषण थी आत्मा ने तथा ज्ञान ने सर्वथा परोक्षज माननार जैमिनीय भट्ट प्रभाकर भेद वाला मीमांसकोना मतनो व्यवच्छेद थाई जे। व्यवच्छेद थाई जे ने उसका खंडन हो जाता है, नाश हो जाता है। तो किसका नाश होता है? तो मीमांसक नाम के जो मतानुयायी है उनका। तो उनमें जैमिनीय भट्ट प्रभाकर आदि जो है वो उनमें से कोई मुखिया थे इस बात को मानने वाले, उनका भी यहाँ खंडन हो जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भूख लगती है ये आपको समझता है क्या? मम्मी को समझता है? हाँ, तो अरे तुम्हारी जैसे मम्मी तो बार बार बच्चों को, अरे तू बैठ खा ले, तेरे कुछ नहीं समझते, तू खा ले, ऐसा जबरदस्ती करती ना। तो यहां तो कहते हैं कि स्वयं को ही अनुभव होता है, और हम जाके कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दुख रहा है। कहां दुख रहा है? अरे कहां दुख रहा है क्या, हम डॉक्टर थोड़ी है, हमारे पेट में दुख रहा है, तू डॉक्टर है तू जान। तो वो जानेगा कि नहीं, ख्याल में आया? यहां तो कहते जिसको दुखेगा जिसको अनुभव हो रहा वो तो जानेगा। इसी तरह कहते हैं कि पोते ने पोता थी जाने छे प्रकट करे छे, यानी प्रत्येक आत्मा अपना स्वयं का अनुभव स्वयं जानेगा। और कैसा है कि आत्मा ने तथा ज्ञान ने सर्वथा परोक्षज मानना, यानी आत्मा और ज्ञान जो है वो आत्मा का अनुभव ही नहीं कर सकता है, वो परोक्ष है, ऐसा मानने वालों का यहां तो अनुभवन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है ना। अनुभव जो है, हमारा सिर दुख रहा है तो हमें अनुभव होगा कि नहीं? तो डॉक्टर पूछेगा इधर दुखता है क्या? नहीं इधर नहीं इधर, हाँ, क्योंकि सिर तो आंखें को बोले जाता है ना, थोड़ी इधर कर। तो इसलिए कह रहे हैं पोता परोक्ष जो मानने वाले, वैसा तो जो वेदन होता है आत्मानुभव होता है वह तो प्रत्यक्ष ही है। अब वो तो बात जुदी है, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं हम? तो हमने क्या देखा था, प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहना है कि जिस ज्ञान में कोई भी इंद्रिय मनुष्य की अपेक्षा से 5 इंद्रिय और मन भी सहायभूत नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। और जब यह मतिश्रुत ज्ञानी पर को जानता है तब तो वहां इंद्रिय या मन के माध्यम से जानता है। जानता तो आत्मा ही है लेकिन मीडिया जो है बीच में वो इंद्रियां है या तो मन है, लेकिन जब आत्मा को जानेगा तब तो वह डायरेक्ट जानता है। उसमें मन और इंद्रिया अन्य कोई भी बातें उसमें मतलब कार्यकारी नहीं है, ख्याल में? वो तो प्रत्यक्ष जानता है, प्रत्यक्ष अनुभवता है, इसलिए वो बात हो गई। मीमांसक मतनो व्यवच्छेद थयो। अभी नीचे से दूसरी लाइन, तेमज ज्ञान अन्य ज्ञान थी जानी शकाय छे। क्या कहा? तेमज ज्ञान अन्य ज्ञान थी जानी शकाय छे, पोते पोताने नथी जाणतू एवू माननार नैयायिको नो पण प्रतिषेध थयो। क्या कहते हैं कि ये ज्ञान दूसरे के ज्ञान से जाना जाता है, स्वयं नहीं जानता है, ऐसा कहने वाले जो नैयायिक है उनका भी मत का यहाँ प्रतिषेध यानी निषेध थयो। देखो यहाँ एक शब्द जो है वो दोबारा नहीं वापरा हुआ है, ये विशेष है। देखो ये व्यवच्छेद कहा हा? और नैयायिको ने निषेध थयो कहा, यहाँ फिर प्रतिषेध थयो। देखो ये आचार्यों के एक एक शब्द भी कैसे हैं, ये सारा जो है हम तो गुजराती में पढ़ रहे हैं लेकिन मूल संस्कृत में तो यही भाषा है। क्या लिखा नीचे की लाइन, पोते पोता ने नथी जाणतू एवू माननार नैयायिको नो पण प्रतिषेध थयो, वळी ते केवो छे, यानी ते केवो छे यानी आत्मा केवो छे। फिर वो नैयायिक की बात ली इसलिए नैयायिक केवो छे नहीं बता रहे, वो बताने का यहाँ थोड़ी काम है। यहाँ तो आत्मा कैसा है जिनको हम जिसमें हम एकाग्र होना चाहते हैं, यहाँ साक्षात अमृतचंद्र नमस्कार कर रहे हैं ऐसा। तो के सर्व भावांतर छिदे यानी पोता थी अन्य सर्व जीवाजीव, जीवाजीव यानी जीव अजीव चराचर यानी चर अचर सब ये सर्व पदार्थों ने सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों सहित एक ज समय जाननारो छे। क्या कहते हैं वो जो आत्मा है वो कैसा है कि स्वयं से यानी पोता थी किसको किसको जाने, अन्य सर्व जीवाजीव यानी उसका स्वभाव कैसा है, तो बताते सर्वज्ञ स्वभाव ही है। जो स्वभाव होगा वही तो व्यक्त होगा, जो नहीं है वो कहां से आएगा, जो है उसमें से ही पैदाइशी होगी यानी पर्याय व्यक्त होगी। तो कहते पोता थी अन्य सर्व जीवाजीव ने चराचर पदार्थों ने सर्व क्षेत्र काल संबंधी यानी लोकालोक को जाने ऐसा है, त्रिकाल को जाने ऐसा है, और कोई भी पदार्थ अननोन रह जाए बिना जाने हुए रह जाए ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं पोता थी अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों ने सर्व क्षेत्र सर्व काल संबंधी सर्व विशेषणों सहित अने ते पण क्यारे जाने एक ज समय मां। तो ये कौन से केवली भगवान की बात चल रही, सिमंदर भगवान की क्या महावीर भगवान की? हाँ प्रभावेन, ये कौन से भगवान की चल रही बात? अरे वाह, ये अभी लक्ष्मी गई नहीं तो आज वो रुकती नहीं यहाँ, डर जाती। हाँ ये तो प्रत्येक आत्मा की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे देखो, ये जो एक समय में जानना रो छे यानी यहाँ तो द्रव्य का स्वभाव बता रहे, द्रव्य कौन सा, जीव द्रव्य का स्वभाव बता रहे। वो स्वभाव कैसा है कि कहते कि एक समय में 3 काल और 3 लोगों को जाने और उसमें सारा विशेषणों सहित, तो सर्व विशेषणों सहित यानी क्या, प्रत्येक समय में जो पर्याय हो रही है, विशेष विशेष अवस्था हो रही है, इन सारी अवस्थाओं को एक समय में जाने, ऐसा यह शुद्ध स्वभाव है। क्या कहा? आविशेषणों थी सर्वज्ञनो अभाव माननार मीमांसक आदिनु निराकरण थ्यू। ये मीमांसक क्या होता है यही मालूम नहीं है, फिर भी यहां समझ लेना था कि वो तो सर्वज्ञ है नहीं, ऐसा मानते हैं। और यहां तो कहते हैं ये प्रत्येक द्रव्य सर्वज्ञ स्वभावी है, प्रत्येक द्रव्य भगवान बने ऐसा है। तो पहले तो क्या बताते हैं, तू भगवान है और तुझे भगवान बनना है, क्या तकलीफ कर रहे हो भाई? एक बाजू कह रहे तू भगवान है और दूसरे बाजू कह रहे तेरे को भगवान बनना है, तुम ठिकाने पे तो हो? क्या बोल रहे, इस बात का भी पता है तुम्हें? भाई हमें पूरा पता है, तुझे पता कराने के लिए हम कह रहे हैं कि तू भगवान जो है वह स्वभाव से भगवान स्वरूप है, और वो भगवानत्व भगवानपना जो है वह तुझे पर्याय में प्रकट करना है। ख्याल में, ये इसके बारे में तो आप सारे लोग जानते होंगे कि अपने हुकमचंद जी भारिल साहब जो है उन्होंने करोड़पति की एक कथा लिखी है, कहो या व्याख्यान है उसके ऊपर, वो तो सबसे सब लोग जानते हैं। यानी वो करोड़पति होते हुए भी स्वयं को करोड़पति नहीं मान रहा है और उसे विश्वास ही नहीं है कि मैं करोड़पति हूँ। वैसे भी हम लोग सारे सर्वज्ञ स्वभावी होते हुए हम स्वयं को कहाँ मान रहे हैं? हम तो क्या अभी है, अभी तो हमको, अरे हम आके प्रवचन सा क्या समय सार में आके बैठेंगे तो हमको समझेगा क्या? तो पहले से ही रोना चालू हो गया क्या? क्या हम, अरे भाई तू तो सर्वज्ञ स्वभावी है ना प्रभु, तू क्यों चिंता करता है कि मुझे समझेगा कि नहीं? अरे समझेगा तो कौन समझेगा, कुर्सी टेबल पंखा ये समझेगा? समझेगा तो जीव ही समझेगा ना। और कौन सा जीव है कि जो सर्व पदार्थों को जाने ऐसी जिसकी कैपेसिटी है? देखो भाई यह जो उपदेश दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है बताओ, अभी नाम बताओ। ये जो उपदेश अपने को जो दे रहे वो किसने दिया हमको उपदेश? मूल उपदेश करता तो यहां अभी अपने हिसाब से तो कुंदकुंदा आचार्य, वो कभी हुए? महावीर भगवान के पहले के बाद में? बाद में। उसके बाद 1000 वर्ष के बाद अमृतचंद्राचार्य हुए, वो कौन से काल में हुए? चतुर्थ काल में ना। तो पंचम काल के मुनि चतुर्थ काल के जीवों को उपदेश देते होंगे क्या? पंचम काल के मुनि पंचम काल के जीवों को ही उपदेश देते हैं, ये तो पहला नक्की करो ना। और कहते हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे तेरे नहीं समझ में आ गया ऐसा कैसा होगा? क्या यहां तो समझा रहे कि भाई यह तो प्रत्येक जीव को समझे ऐसी बात है, और यहां जो उपदेश दिया जा रहा है, मैं अभी आपको बताया था कि ये मेरे लिए उपदेश दिया जा रहा है, ऐसा आप नक्की करो तो ही बात आगे अच्छी तरह से बढ़ने वाली है। ख्याल में है? देखो ये बात तो मतलब दोबारा मैं कहता हूं, बार बार कहूंगा और कहते ही रहूंगा। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि तू परमात्मा छो एम पहला नक्की कर। क्यों कहते थे? यहां तो वही कह रहे थे, यहां तो सर्वज्ञ नो अभाव मानना मीमांसक, यहां तो कह रहे थे प्रत्येक जीव सर्वज्ञ स्वभावी है। सर्वज्ञ कहो के भगवान को एक ही बात है ना? ना लेकिन हम तो स्वयं को अपने स्वभाव से परिपूर्ण स्वभाव से उसको एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है। मैं ऐसा हूं, ऐसा जब तक अंतरंग में ऐसा होश ना आए तो कौन अपने तरफ जाएगा? ना? हम भी अपने बेटी का ब्याह करेंगे तो कोई अब्जोपति करोड़पति के घर में करेंगे क्या? भिकारपति के यहां करेंगे, रोडपति के यहां करेंगे? ख्याल में? लेकिन वो कोई आवे कोई अब्जोपति और कहे कि हम तुम्हारे बेटी से शादी करते, हम कितने फूले समाते नहीं, हमें इसकी इतनी महिमा है। और कहते हैं अरे तू तो यहां भगवान स्वरूप है, तू तो स्वयं भगवान है स्वभाव से, तो इसमें हमारे को बिल्कुल भरोसा नहीं आता है क्या? तो इसलिए ये बात समझा रहे हैं कि सर्वज्ञ नो अभाव मानना। यहां तो कह रहे पोता थी अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों ने सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों सहित एक समय जाननारो छे सर्व भावांतर छिदे। ये जो जीव का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इससे वो तो उन्होंने जीव का वर्णन किया, लेकिन साथ साथ में मीमांसकों का भी वहां निराकरण कर दिया। आ प्रकारना विशेषणों एटले गुणों थी शुद्ध आत्मा ने ज इष्ट देव सिद्ध करीने तेने नमस्कार करियो छे। अभी भावार्थ देते हैं। आई मंगल अर्थे शुद्ध आत्मा ने नमस्कार करियो छे। मंगल अर्थे एटले क्या हो गया? मंगल का अर्थ तो सब लोग जानते हैं, हा? कौन जानता है नलिन भाई, आप जानते हैं? हाँ हाँ, यानि पाप को जो गाले उसको मंगल कहते हैं, और जो सुख को लाता है उसको भी मंगल कहते हैं। तो ये दोनों बातें हैं, ये मंगल मंगलाती यानी जिसमें से सुख की प्राप्ति होती है, और मंगालयती यानी जो पापों को गलाता है और सुख को लाता है, ऐसा जो कुछ होगा वह मंगल है। क्या कह रहे हैं यहां पर? आई मंगल अर्थे शुद्ध आत्मा ने नमस्कार करियो छे, यानी मेरे में सुख की प्राप्ति हो, मेरे में जो अशुद्धता है, मेरे में जो पाप रूप से जो कोई मलिनता है वह नष्ट हो जाए, इसके लिए शुद्ध आत्मा ने नमस्कार करियो छे। कोई एम प्रश्न करे के कोई इष्ट देव नु नाम लई नमस्कार केम न करियो? तो जो जिसका क्या होता है, फैन होता है ना, तो वो बोले के भाई तुमने फला भगवान का नाम क्यों नहीं लिया, कम से कम इसका नाम लेते, कोई विघ्न हरता, कोई संकट करता, यानी संकट हरता, ऐसा कोई भगवान का नाम लेना चाहिए, तुमने किसका नाम लिया जो भगवान ही नहीं है? तो क्या कह रहे हैं? कोई एम प्रश्न करे कि कोई इष्ट देव नु नाम लेने नमस्कार केम न करियो, तेनु समाधान। ये तो भावार्थ में ये समय सार रूप जो अपना स्वभाव है उसको ही क्यों नमस्कार किया, इसका विश्लेषण दे रहे। कह रहे वास्तविक पणे इष्ट देव नु सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा जो छे। ये किसके आत्मा की बात कर रहे हैं? जो अपने प्रत्येक का जो शुद्ध स्वभाव भाव है उसकी बात कर रहे हैं। सामान्य स्वरूप यानी सब कोई भी जीव होवे, तो मैं आपसे पूछूंगा ये भव्य जीव की बात कर रहे हैं क्या अभव्य जीव की? हाँ बोलो मम्मी, बनने नहीं अभव्य बन। अरे कुछ गलती हो रही है। वीरेश भाई आप क्या कहना चाहते हैं? सभी जीवों की भव्य की क्या अभव्य की, ऐसा मैं पूछ रहा हूं। हाँ बोलो बेन, भव्य कहो या अभव्य कहो, दोनों स्वभाव से तो सर्वज्ञ स्वभाव ही है। ख्याल में आया? हाँ, मम्मी कभी रॉन्ग नहीं जाती ना। तो क्या कहा? तो कह रहे हैं कि वास्तविकपणे इष्ट देवपणु कोणामा छे, सामान्य स्वरूप कोनू के सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा छे। तो शुद्ध आत्मा ने एज इष्ट देव छे। क्यों? देखो देखो देखो, हम अगर नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम करके हम पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं तो हमें निर्बंधावस्था होगी क्या? नहीं बोलो हेतल, बोलो बोलो, अरे मुझसे बोलो, क्योंकि तुम्हारे सामने वाले ऐसा ऐसा करते तो तुम उसका देख देख के ऐसा ऐसा कर दिए, क्योंकि हाँ भी बोले और ना भी बोले, ऐसा नहीं, मुझसे बोलो। हाँ क्या होगा? सरबंद होगा। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ देखो भाई, हम जब पर के तरफ देख रहे हैं तब हमें राग हुए बिना अथवा द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं, ख्याल में। तो यहां तो ये समझा रहे कि पंच परमेष्ठी जो है वह तो निश्चित रूप से वंदनीय है, लेकिन उससे भी इष्टपना किसमें है? तो अपने स्व स्वभाव में। इसलिए कह रहे हैं इष्ट देवपनु सामान्य स्वरूप आवु छे, તેથી આ અધ્યાત્મ ગ્રંથમાં સમયસાર કહેવાથી ઈષ્ટદેવ આવી ગયા. એ સમયસાર યાની પ્રત્યેક જો સ્વ કા જો આત્મા હૈ વહ તો ઈષ્ટદેવ તરીકે સે આયા હૈ ઓર ઉસી કા વહ ઈષ્ટદેવ કા હી હમ ચિંતન મનન કરકે ઉસમે સ્થિત હો જાય સ્થિર હો જાય તો તેરા નમસ્કાર હો ગયા એસા કહેતે. તથા એક જ નામ લેવામાં અન્ય મતવાદીઓ મત પક્ષનો વિવાદ કરે છે, યાને આપ યે પક્ષ કે વો પક્ષ કે એસા કરકે ઉસમે વાદ વિવાદ ચલતા હૈ. તે સર્વનું નિરાકરણ સમયસારના વિશેષણો વર્ણવીને કોનસે વિશેષણ લીધા હે કે ભાવાય ચિત્ત સ્વભાવાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ઓર સર્વ ભાવાંતર છિદે. યે પૂરા એસા હી હૈ ના, નમસ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વ ભાવાંતર છિદે. ઇસમે યે સારી મતલબ યે નમસ સમયસારાય છોડકર ભાવાય ચિત્ત સ્વભાવ સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ઓર સર્વ ભાવાંતર છિદે. ઇસમે તો અન્ય મતિયોં કા ભી ખંડન હો ગયા એસા કહે રહે. क्या कहा? ते सर्वनु निराकरण समयसारना विशेषणों, समयसार एटले शुद्ध आत्माना विशेषणों वर्णवीने कर्यो. वळी अन्यवादीओ पोतानु इष्टदेवनु नाम ले छे, तेमा इष्ट शब्दनो अर्थ घटतो नथी, बाधाओ आवे छे. अने स्यादवादी जैनों ने तो सर्वज्ञ वितराग शुद्ध आत्मा ज इष्ट छे. ये जैन भी कैसा लिया है कि स्यादवादी ला लिया. भले पची भले ते इष्टदेव ने परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर परब्रह्म शिव निरंजन निष्कलंक अक्षय अव्यय शुद्ध बुद्ध अविनाशी अनुपम अच्छेद्य अभेद्य परम पुरुष निराबाध सिद्ध सत्यात्मा चिदानंद सर्वज्ञ वीतराग अरहत जिन आप्त भगवान समयसार इत्यादि हजारों नामों थी कहो. क्या कहा? ये हम आप लोग तो मालूम नहीं है, लेकिन एक पूजन आती है भगवान के 1008 नाम उसमें रहते हैं. हाँ जी, हाँ सहस्त्र नाम पूजा बोलते हैं उसको, क्योंकि आपने यहाँ आधे लोग तो पूजा करते ही नहीं. आधे लाख करते हैं तो 10 मिनट वाली जो पूजा होगी वो पहले करेंगे, वो इतना लंबा चौड़ा कौन करेंगे, ऐसा होता है. आधे लोगों की बात करें, अपनी नहीं. ख्याल में आया, यानी मैं ये बताना चाहता हूँ उसमें 1008 नाम गिनाए हैं उस पूजा में, और ये सब जिनेंद्र भगवान के ही लक्षण के अनुसार उनके नाम है. ख्याल में तो इसमें से बहुत सारे तो उन्होंने बताए, 10-20-25 जो भी है. सर्वथा एकांतवादियों ने भिन्न नामों में विरोध छे, यानी सर्वथा एकांतवादी ने एक ही बात को सर्वथा ऐसी ही है ऐसे मानने वाले वो एकांतवादी है. सर्वथा एकांतवादियों ने भिन्न नामों में विरोध छे, स्यादवादी ने काई विरोध नथी, माटे अर्थ यथार्थ समझवो जोइए. यानी यहाँ जो अभी हमने जो अर्थ देखा है श्लोकार्थ में वो सही रूप से समझना चाहिए. यहाँ एक बात का आपको मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ. ये एकांतवादी जो है इसका अर्थ थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ. देखो प्रत्येक द्रव्य जो है ना, वो प्रत्येक द्रव्य अनेक धर्मात्मक है. थोड़ा सा मैं अन्य प्रकार से बताऊंगा आपको कि हमारा धर्म कौन सा, जैन धर्म अनेकांत स्वरूप है, अनेकांत वादी है. कहो अनेकांत, तो अनेकांत का अर्थ क्या होता है? अन याने नहीं एक, अन प्लस एक इज इक्वल टू अनेक, याने जो अन याने नहीं एक नहीं तो अनेक, अनेक शब्द तैयार होता है ना, तो अनेक अंत याने धर्म, अंत याने स्वभाव, तो अनंत अनेक धर्म जिनमें समाहित है ऐसा जो वस्तु स्वरूप है उसको समझाने वाला अनेकांत वाद, वाद इन द सेंस कथन पद्धति. और वो कैसी है? मैं किसी से पूछूं कि आपको कितने लड़का लड़की है, तो आप कहेंगे 5 है, जो भी हो मैं नहीं जानता हूं, आप समझ लेना, 2 भी हो, 2 है, चलो तो 2 है, तो 2 है तो दोनों को एक साथ नाम बता पाओगे? नहीं, क्रम से बताएंगे। वैसे वस्तु में भी अनेक धर्म है, अनेक स्वभाव गूथे हुए हैं, तो उसको क्रम से कह सकेंगे। लेकिन क्या है, तो उसमें किसी एक को सर्वथा ऐसा ही द्रव्य है कहना, मानना, वह एकांत हुआ, एक अंत, एक धर्म को ही मुख्य करके। जैसा हम देखते हैं कि हम कहते हैं जो द्रव्य है वह नित्य और अनित्य दोनों है, तो कथनचित यानी किसी अपेक्षा से स्यात नित्य है और स्यात अनित्य है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। लेकिन यहां तो ये समझा रहे हैं कि उसको एकांत रूप से मानने वाले एकांती है, और जिनको स्यात यानी कथनचित इसी अपेक्षा से ऐसा है कहने वाले अनेकांतवादी है। इसका स्वरूप हम कल स्पष्ट करेंगे अधिक, अगर आप सही टाइम पे आ जाओ तो सब चीज मिल जाएगी आपको। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकणमो सदा देत हो।